इंतजार। आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अबीर के पास ऐसा कौन सा मैसेज आया था जिसे देखने बाद वो इस तरह जल्दबाजी में चला गया। अब आगे, क्योंकि अरमान और आस्था के मामलों में आज तक कोई भी बात नॉर्मल नहीं रही थी, वहीं इस वक्त संजना पूरी तरह से उखड़ी हुई खड़ी थी। क्योंकि अरमान भले ही अपनी यादें खो चुका था, लेकिन जिस तरह से उसने अबीर और आस्था को कठोरता से देखा, उसके चेहरे से जलन और ईर्ष्या साफ साफ टपक रही थी, और ये एक्सप्रेशन उससे भी छिपे नहीं रहे। वो मन ही मन चिल्ला रही थी, न जाने इसमें ऐसा क्या है, पता नहीं ये लोगों पर ऐसा कौन सा काला जादू कर देती है कि हर कोई इसे अपने करीब देखना चाहता है। लेकिन अब और नहीं, इस बार मैं तुम्हें अरमान सिंघानिया की जिंदगी में वापस नहीं आने दूंगी। मैं ऐसी चाल चलूंगी कि अरमान हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और तुम खुद ही हमारी जिंदगी से बाहर निकल जाओगी। रही बात तुम्हारी बेटी की, इसके लिए मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये सोचते हुए संजना के चेहरे पर पूरी तरह क्रूरता झलक रही थी। फिलहाल संजना के वहां से जाने के बाद अचानक अरमान उठ खड़ा हुआ और आस्था को पकड़ते हुए झुंझला कर बोला, आखिरकार ये अबीर सिंह राठौर तुम्हारे इतने पास क्यों आया था? तुम दोनों दोस्त कब बने? तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा उसके साथ अच्छा खासा चक्कर चल रहा है। अरमान की ये बातें सुनकर आस्था ने ठंडी आह भरी और मन ही मन चिढ़कर सोचने लगी, भले ही मेरे प्यारे पतिदेव की यादें चली गई हों, लेकिन अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखना ये आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इतना सोचकर फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई, लेकिन खुद के इमोशंस को छुपाते हुए वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, मिस्टर सिंघानिया, अब अबीर सिंह राठौर यहाँ क्यों आए थे इसके बारे में मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? हो सकता है वो बस मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे और वो बस मेरे दोस्त हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि अबीर सिंह राठौर से मेरी दोस्ती करवाने वाले आप ही थे, वरना मेरा तो उनसे दोस्ती करने का कोई खास इरादा नहीं था। आस्था ने बड़ी सफाई से सारी बातें अरमान पर डाल दी, तो इस पर अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आस्था उठी और अंश को अरमान की गोद में देते हुए एकदम से मुस्कुराकर बोली, अच्छा मिस्टर सिंघानिया, अब आप प्लीज अपने बेटे को कुछ देर के लिए संभाल लीजिए। वो एक्चुअली आज शाम को अबीर मेरे साथ डिनर पर जाना चाहते हैं, तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी होगी ना, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना पार्लर जाकर थोड़ा बहुत तैयार हो जाऊँ, फिर उसके बाद शाम को उनके साथ डिनर पर जाऊँ। आस्था ने जानबूझकर ये सब कहा ताकि अरमान को भड़काया जा सके, और हुआ भी वैसा ही। अरमान का चेहरा गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गया, उसकी आंखों में खून उतर आया। वो मन ही मन कुढ़ रहा था, ये मेरी बीवी होकर किसी और के लिए सजेगी, किसी और के साथ डिनर पर जाएगी। ये सोचते हुए अरमान का हाथ अपने आप आस्था के कंधे पर आ गया और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। आस्था को दर्द का एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, रौनक हॉस्पिटलाइज्ड है। ये मैसेज पढ़कर आस्था के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आई। उसने फौरन अंश को अरमान की गोद से लेकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल चलना होगा। रौनक को एडमिट कराया गया है और किसी भी वक्त बच्चे का जन्म हो सकता है, इसलिए हमें उसके पास जाना होगा। ये कहते हुए उसने अरमान का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकल गई। वहीं संजना के चेहरे के एक्सप्रेशंस बनते बिगड़ते जा रहे थे। आस्था ने कितने हक से अपने पति का हाथ पकड़ रखा था और अरमान बिना कुछ सोचे उसके साथ चला गया। ये नज़ारा देखकर संजना का खून खौल उठा। गुस्से में उसने अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल की नोक अपनी हथेली में गड़ा दी। संजना को अरमान से बहुत गहरी मोहब्बत थी, लेकिन अब वो रिश्ता सिर्फ एक दर्द बनकर रह गया था, जिसकी वजह केवल आस्था ही नहीं बल्कि खुद अरमान भी था। संजना अरमान को बहुत पहले से जानती थी, शायद आस्था से भी पहले। फ्लैशबैक, एक समय था जब अरमान ने गरीब लड़कियों को इंसाफ दिलाया था, जो लड़कियों को बड़े बड़े नेताओं को सप्लाई किया करते थे। उसी नेटवर्क में कई लोग काम करते थे, छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर से लेकर ऊंचे पदों तक सभी सेट थे। इसी वजह से कोई भी उन अपराधियों को पकड़ नहीं पाया था। जब अरमान को कॉन्फिडेंशियली इस राज के बारे में पता चला, तो अरमान ने उन्हें अपने हाथों से बेहद खतरनाक सजा दी थी। अरमान की सजा देखने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन वहां खड़ी काली आंखों में जुनून लिए एक लड़की अरमान को एकटक देख रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि संजना सिंह थी। उस वक्त संजना के पिता दुर्जन सिंह मशहूर बाहुबली और संपर्क वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए गांव से बाहर भेजा था। गांव में रहते हुए संजना केवल अपने आप में मग्न रहा करती थी। संजना की जिंदगी आस्था से कहीं अलग थी। आस्था के माता पिता की मौत के बाद उसकी नानी माँ ने उसे सहारा दिया था। गांव में आस्था को किसी ने नहीं अपनाया था। छोटी सी नन्ही आस्था केवल अपनी नानी माँ की इच्छाओं और दुआओं में पलने लगी थी। लेकिन दुर्जन सिंह को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि शारदा महल पर शुरू से उसकी नजर थी। वो नहीं चाहता था कि शारदा महल का कोई और हकदार हो। वहीं संजना को पूरे गांव में हमेशा इज्जत और डर की नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वो बाहुबली दुर्जन सिंह की बेटी थी। हर कोई उससे डरता था, लोग उसके सामने सिर झुकाकर बात करते थे। संजना भी अपने पिता की तरह अहंकारी और घमंड में डूबी रहती थी। वो जिसे चाहती उसके साथ खेला करती, बच्चों की तरह नहीं बल्कि अपने घमंड के नशे में किसी की भी जिंदगी बिगाड़ सकती थी। संजना पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, जबकि उसकी हमउम्र आस्था बिल्कुल उलट बेहद नरम दिल और पढ़ाई में अव्वल थी। वो सबकी मदद करती थी। धीरे धीरे नन्ही आस्था ने पूरे गांव के दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर लिया था, लेकिन संजना से सब डरने लगे थे।
जब संजना और आस्था दोनों करीब 8 साल की थी तब गांव की पाठशाला में आस्था बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन उस समय संजना फेल हो गई थी। पूरे गांव में उसकी हंसी उड़ाई गई मगर उसके सामने हंसने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी दिन से संजना को आस्था से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। धीरे धीरे उसने आस्था को नीचा दिखाने के लिए छोटी छोटी मुश्किलें पैदा करनी शुरू कर दी। कभी उसकी साइकिल तोड़ देती जिससे आस्था स्कूल जाती थी, कभी उसके फेवरेट खिलौने जला देती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आस्था के पास कुछ भी अच्छा रहे। गांव के जो लोग आस्था से प्यार से बातचीत करते थे उन्हें भी संजना के गुंडे धमकाते और उनकी पिटाई कर देते थे। बचपन से लेकर बड़े होने तक आस्था के प्रति संजना की नफरत बढ़ती गई और उसे खुद नहीं पता चला कि ये नफरत कब जुनून में बदल गई। फिलहाल अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए दुर्जन सिंह ने उसे शहर भेजा था ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। लेकिन शहर आने के बाद जब संजना ने अरमान सिंघानिया को पहली बार देखा तो वो उसकी एक झलक पर ही फिदा हो गई थी। उसी दिन उसने ठान लिया था कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ उसी का होकर रहेगा। पर जब उसे पता चला कि अरमान तो पहले से ही आस्था का पति बन चुका है तब उसकी नफरत की कोई सीमा नहीं रही। उसने मन ही मन कसम खा ली थी चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो आस्था से अरमान को छीन कर रहेगी। अरमान पर अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ और सिर्फ संजना सिंह का। संजना के अलावा अरमान किसी और का नहीं हो सकता, यही सोचकर उसकी आंखों में उसके खतरनाक इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। उधर आस्था इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अरमान की ओर देखकर एकदम से बोली, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ, आप देखना आहान भैया की बेटी ही होगी, और वैसे भी आपको तो बेटी चाहिए थी ना, याद है आपको?
उसकी इस बात पर अरमान मुस्कुरा भी नहीं पाया था क्योंकि आस्था की एक्साइटमेंट देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो आस्था को क्या जवाब दे क्या नहीं। वहीं आस्था ने एक्साइटेड होकर फिर ड्राइवर से कहा, ड्राइवर भैया जल्दी चलो ना, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। अब अरमान आस्था के अंदर की बेचैनी और उसकी उत्सुकता को महसूस कर पा रहा था। उसने उसे थोड़ा शांत करते हुए कहा, देखो एंग्री बर्ड, हम पहुंच जाएंगे, तुम इस तरह से इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रही हो, और वैसे भी ये कार है कोई एरोप्लेन नहीं। कभी एरोप्लेन में बैठी भी हो तुम, देखा भी है तुमने एरोप्लेन? अब जैसे ही अरमान ने ये पूछा तो वैसे ही आस्था थोड़ा सा शांत हो गई थी, क्योंकि सच तो ये था कि उसका अरमान से बहस करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वो बस जल्द से जल्द उड़कर दौड़कर या किसी भी तरह से रौनक के पास पहुंचना चाहती थी। फिलहाल पूरा का पूरा ग्रुप अब सीधा हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था, लेकिन ध्रुव सीधा कहीं और नहीं बल्कि वंशिका के पास जा पहुंचा था। वंशिका अभी भी डरी सहमी हुई पूरे घर में यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। घर में कभी लाइट जल रही थी कभी बंद हो रही थी, साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ का सारा सामान भी बिखर कर टूटा पड़ा हो। अब वंशिका डरते घबराते हुए चारों तरफ प्रोफेसर को आवाज़ें लगा रही थी, प्रोफेसर, प्रोफेसर प्रशांत, बाबा आप कहाँ हैं? लेकिन प्रोफेसर प्रशांत का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी अचानक वंशिका के दिमाग में सीक्रेट लैब का ख्याल आया। उसे लगा कहीं प्रोफेसर वहां तो नहीं है। देर ना करते हुए उसने फटाफट लैब का दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो अंदर आई उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गईं। घायल अवस्था में प्रोफेसर प्रशांत उसके सामने पड़े हुए थे। पूरी की पूरी लैब को बुरी तरह से तोड़फोड़ कर रखा गया था। प्रोफेसर साहब की ऐसी हालत देखकर वंशिका का दिल तड़प उठा। वो पूरी तरह से गमगीन और सदमे में थी। उसने जोर से एक चीख मार दी, लेकिन ठीक उसी वक्त उसे एहसास हुआ मानो जैसे उसके पीछे कोई शख्स मौजूद हो। वंशिका और ज्यादा डर गई। उसने जल्दी से अपने हाथ में एक डंडा उठा लिया ताकि जो भी वहां हो वो उसका मुकाबला बहादुरी से कर सके। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने वाले शख्स पर पड़ी वैसे ही उसने सामने से आते हुए इंसान का चेहरा देखा जिसके हाथ में बंदूक थी। उसे देखते ही वंशिका का डर अचानक गायब हो गया। देर ना करते हुए वो दौड़कर उस इंसान से लिपट गई क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। ध्रुव मौका मिलते ही वहां पहुंच चुका था। आखिर वो अपनी बीवी को इस तरह मुसीबत में कैसे छोड़ सकता था? अब ध्रुव के आने पर वंशिका फूट पड़ी। ध्रुव देखो ना ये सब क्या हो गया है, और प्रोफेसर बाबा देखो बाबा के साथ क्या किया गया है, आखिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने ये सब किया? तभी ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रोफेसर प्रशांत को चेक किया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड विलियनेयर हस्बैंड।